starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
मुख्य समाचारों में स्कॉट मॉरिसन की गुप्त मंत्री स्तर की नियुक्तियों पर गठबंधन के और लोगों द्वारा भी चिंता। ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर गिर के 3.4% पर और भारत उत्तर प्रदेश में किसानों का 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन आज से शुरू। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता परार के साथ। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का कहना है कि स्कॉट मॉरिसन ने अपनी मंत्री नियुक्तियों को गुप्त रखकर लिबरल नेशनल गठबंधन समझौते का उल्लंघन किया। नेशनल्स की सेनेटर ब्रिजिट मैकेंजी का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के फैसले ने उनकी पार्टी के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया। श्री मॉरिसन ने मार्च 2020 और मई 2021 के बीच गुप्त रूप से खुद को वित्त, ट्रेजरी, स्वास्थ्य, गृह मामलों और संसाधन यानी रिसोर्सेस विभागों में नियुक्त किया। कई अन्य मंत्रियों से माफी मांगने के बाद पूर्व नेता ने कथित तौर पर अपने पूर्व मंत्री सहयोगी कैरन एंड्रयूज को माफी मांगने के लिए गुरुवार को सुबह फोन किया। इस बीच रोजगार के लिए विपक्ष प्रवक्ता मिशालिया कैश ने श्री मॉरिसन के व्यवहार को निराशाजनक बताया।
The decision itself, based on what appears to be Section 63 and 64 of the Constitution, is a legal one. But of course, the transparency and the not telling the relevant colleagues at the time is a great disappointment. And Mr. Morrison yesterday, in addressing the media, he acknowledged this. He apologised to colleagues, and in particular those affected by his decision.
Anthony Albanese ने संसद में स्वदेशी आवाज पर परामर्श करने के लिए अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर टॉरेस स्ट्रेट क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा और प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि सांस्कृतिक समृद्धि स्वदेशी लोगों के अपने और अपने देश के लिए उनके स्वयं में मौजूद मजबूत गौरव से आती है। श्री अल्बिनीसी कहते हैं कि ये पूरे देश के लिए भी गर्व का सूत्र होना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि वॉइस प्रक्रिया इसमें योगदान दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो टॉरस स्ट्रेट का दौरा करने के लिए दृढ़बद्ध थे, क्योंकि वो उन लोगों से बात किए बिना नीति बनाने में विश्वास नहीं करते थे जो प्रभावित होंगे।
For 121 years, a lot of decisions have been made in Canberra, and we know that what works best. When you're talking about any group of people, is that good manners, but also good practice, is when you consult people and engage with people and give people that sense of ownership over a direction in their lives. And that's what I'm absolutely committed to doing.
The Voice, संसद के लिए प्रथम राष्ट्र के लोगों की एक प्रस्तावित एडवाइजरी बॉडी पहली बार 2017 के उलूरू स्टेटमेंट फ्रॉम हार्ट में आई थी, जो कि एक पृष्ठ का दस्तावेज था और इसमें ऑस्ट्रेलियन संविधान में प्रथम राष्ट्र की आवाज़ को स्थापना के लिए कहा गया था। ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर घटकर 3.4% रह गई है, जिसमें 20,000 नौकरियां जुड़ गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 1974 के बाद से ये सबसे कम बेरोजगारी दर है। एबीएस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जुलाई में बेरोजगारी में गिरावट एक तेजी से उभरते लेबर बाजार को दर्शाती है, जिसमें उच्च नौकरी में रिक्तियां यानी जॉब वैकेंसीज और श्रम यानी लेबर की कमी शामिल है। फेडरल रोजगार मंत्री टोनी बर्ग का कहना है कि सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मजदूरी जीवन यापन की लागत के साथ बनी रहे।
We need to make sure that the nexus between low unemployment and wages getting moving again returns, and we look to the Jobs and Skills Summit to be able to provide that information. So that's the update on the figures, but effectively, the story remains the same. The only way to make sure that we get wages moving, to be able to keep up with what's been happening with prices and for people to have some chance as time goes on to be able to get ahead again, is through the deliberate actions of government.
रिकॉर्ड कम बेरोजगारी का अर्थ है कि हर खाली नौकरी के लिए प्रभावी रूप से एक बेरोजगार व्यक्ति था, जिसे देश भर के नियोक्ताओं द्वारा महसूस किया जा रहा है. वे कर्मचारियों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जिन लोगों के घर न्यू साउथ वेल्स उत्तरी नदियों की बाढ़ में तबाह हो गए थे, उनके लिए सरकारी पुनर्खरीद योजना के लिए पात्रता मानदंड को अंतिम रूप दिए जाने के लिए अब कुछ ही महीने बाकी हैं. प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि उन्होंने बुधवार को लिस्मोर में बाढ़ पर एक जांच रिपोर्ट जारी करने के बाद इस योजना के लिए संयुक्त सरकारी वित्त पोषण के बारे में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी के साथ बात की है. नाइन टुडे शो से बात करते हुए श्री पेरोटे ने एक महत्वाकांक्षी बहु अरब डॉलर की योजना का अनावरण किया, ताकि उत्तरी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को भूमि की अदला बदली और बाईबैक प्रावधानों को चिन्हित करके भविष्य की तबाही से बचा जा सके.
I think some of the announcements yesterday in terms of a buyback scheme, we will work through those details. We can't keep making the same mistakes, particularly when it comes to development in flood-prone areas. Mm. We've got to be smarter about the way that we do things. And I think yesterday was a line in the sand about the way that we build communities in a more resilient way in the future.
Shri Perote ka kehna hai ki sarkar is punarkharid yojana ke liye arhata prapt karne ke liye mandandon ko ek saath rakhne ki prakriya mein thi aur varsh ke ant mein jankari jari ki jayegi. न्यूजीलैंड में सैकड़ों दक्षिण द्वीप निवासियों को निकाला गया है और न्यूजीलैंड की सर्दियों में बाढ़ के नुकसान के बाद कई लोगों के पास रहने योग्य घर नहीं होंगे. अब तक का सबसे अधिक प्रभावित शहर नेल्सन है, जहां बारिश ने सड़कों को नष्ट कर दिया है, घरों को बर्बाद कर दिया है, जिससे आपातकाल की स्थिति बन गई है. आपातकालीन प्रबंधन मंत्री किरण मैकॉन्टी ने प्रभावित देशों का दौरा करने के लिए गुरुवार को नेल्सन के लिए उड़ान भरी. युद्धकालीन प्रतिद्वंदी सर्बिया और कोसोवो उच्च स्तरीय संकट वार्ता कर रहे हैं. यूरोपीय संघ के मध्यस्थों को उम्मीद है कि ये बाल्कन में बढ़ते तनाव को कम करेगा. सर्बिया और कोसोवो के बीच नवीनतम तनाव पिछले महीने के अंत में बढ़ गया, जब कोसोवो की सरकार ने घोषणा की कि सर्बियाई पहचान दस्तावेज और वाहन लाइसेंस प्लेट अब कोसोवो क्षेत्र पर मान्य नहीं होंगे. नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग, जिन्होंने बुधवार को कोसोवो और सर्बिया दोनों के नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की, उन्होंने कहा कि कोसोवो में तैनात नेटो के नेतृत्व वाले सैनिकों ने मौजूदा तनाव के कारण सर्बिया के साथ कोसोवो की उत्तरी सीमा पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है.
I call on all sides to show restraint and to avoid violence. NATO continues to monitor closely the situation on the ground. Our KFOR peacekeeping mission remains focused on its UN mandate. Should stability be jeopardized, KFOR stands ready to intervene.
Kosovo, Serbia ka ek purv prant hai, jisne desh ki 2008 की स्वतंत्रता की घोषणा को मान्यता देने से इनकार कर दिया है. यूरोपीय संघ ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए वर्षों की बातचीत पर देखरेख की है. और भारत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्र के खिलाफ किसानों का 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन आज से शुरू हो गया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. इस 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और योगेंद्र उग्रा जैसे वरिष्ठ किसान नेता शामिल होंगे. किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज मामलों को केंद्र से वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं. इसके अलावा SKM ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी देने की भी मांग की है. जैसा कि विदित है, लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को हिंसा के दौरान 4 किसानों सहित 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी. किसान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 69 सेंट और भारत के 55 रुपए 25 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में, नेशनल रग्बी लीग कमीशन का कहना है कि सिडनी इस साल के ग्रैंड फाइनल की मेजबानी करेगा। औपचारिक घोषणा के लिए आज दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए बोर्ड के अध्यक्ष पीटर वी लेडिस ने कहा कि ये कठिन निर्णय था लेकिन सही था। उनका कहना है कि न्यू साउथ वेल्स का मेजबान होना प्रशंसकों के हित में है।
As I said, it's been a very hard decision because the Queensland Premier has been fantastic to deal with, but at the same time, the new sporting minister, Alastair Henskins, has been extremely professional, courteous, and it's only that reason that we were able to come to the conclusion we have.
और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को पर्थ में बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। होबार्ट में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.